खबरों से भरे न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। इस पॉडकास्ट में हम यूपी की नई आबकारी नीति के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर की बात भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने देश विभाजन के लिए राष्ट्रपिता को जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा आज के पॉडकास्ट में मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और इसके टीकाकरण अभियान को लेकर बातचीत करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। हाल ही में भारत के औषधि नियामक द्वारा देश में विकसित टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री का सभी मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहला संवाद होगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रधानमंत्री ने अन्य मुद्दों को लेकर कई मौकों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। आपको याद दिला दें कि भारत में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे कोरोना के टीकाकरण को लेकर व्यापक अभियान की तैयारी चल रही है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। केंद्र और किसान संगठन के बीच 7 जनवरी को हुई 8वें दौर की बातचीत में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया, क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया, जबकि किसान नेताओं ने कहा है कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी घर वापसी सिर्फ कानून वापसी के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई प्रधान न्यायाधीश SA बोबडे की अध्यक्षता वाला पीठ करेगा। सीमा गतिरोध के चलते प्रभावित हुए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य किए जाने के प्रयासों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि वह काला पानी, लिम्पिया धूरा और लिपुलेख क्षेत्र को भारत से वापस लेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री के 14 जनवरी को प्रस्तावित भारत दौरे से ठीक पहले ओली ने नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। ओली ने कहा, सुगौली संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से के काला पानी, लिम्पिया धूरा और लिपुलेख नेपाल का भाग हैं। हम भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता के जरिए इन्हें वापस लेंगे। उन्होंने कहा, हमारे विदेश मंत्री 14 जनवरी को भारत दौरे पर जाएंगे और इस दौरान उनकी वार्ता के केंद्र में नक्शे का मुद्दा होगा, जिसमें हमने उक्त तीनों क्षेत्रों को शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि नेपाल सरकार ने पिछले साल भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिम्पिया धूरा और लिपुलेख के अपने होने का दावा करते हुए विवादित नक्शा जारी किया था, जिसका भारत ने कड़े शब्दों में विरोध जताया था। नए साल में अब लगभग पूरे देश में स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस के डर से देश भर के लगभग तमाम स्कूल बंद पड़े थे। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूलों को फिर से खोल दिया है। अब गुजरात सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को आज से फिर से खोलने का निर्णय किया है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुड़ासमा ने की है। ये खबरें आप न्यूज 18 के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से मंजूर की गई नई आबकारी नीति में कई अहम फैसले किए गए हैं। अगर आप घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखते हैं तो इसके लिए आपको हर वर्ष ₹12,000 लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धन राशि ₹51,000 जमा करनी पड़ेगी। यह जानकारी आबकारी विभाग के मुख्य सचिव संजय आर भूस रेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए देशी विदेशी मदिरा के साथ मॉडल शॉप के वार्षिक लाइसेंस की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। इन कदमों से प्रदेश सरकार को तकरीबन 6,000 करोड़ रुपये अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। राजधानी भोपाल के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर और BJP सांसद रामेश्वर शर्मा ने देश विभाजन के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिम्मेवार बता दिया। यहाँ वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को कोसते कोसते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोस गए। उन्होंने देश विभाजन के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिम्मेवार बता दिया। सुने कि मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा।
क्या है, नाम से गफलत होती है दिग्विजय सिंह, काम और व्यवहार से जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है। पहले का जिन्ना ने देश विभाजन किया, 47 में बापू से भूल हुई और देश के दो विभाजन हुए, ऐसा ही विभाजन ही करना चाहता है।
उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11-13 जनवरी के बीच शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है, जो अगले 3-4 दिन तक बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। ये खबरें आप न्यूज 18 के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार।